अध्याय 13 श्लोक संख्या 22। पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसंगोस्य सदसद् जन्म योनिसु। अनुवाद और तात्पर्य द्वारा श्लोक उपात। इस प्रकार जीव प्रकृति के तीनों गुणों का भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन बिताता है। यह उस प्रकृति के साथ उसकी संगति के कारण है। इस तरह उसे उत्तम तथा अधम योनियां मिलती रहती हैं। तात्पर्य यह समझने के लिए महत्वपूर्ण है कि जीव एक शरीर से दूसरे शरीर में किस प्रकार देहांतरण करता है। दूसरे अध्याय में बताया गया है कि जीव एक शरीर को त्याग कर दूसरा शरीर उसी तरह धारण करता है जिस तरह कोई वस्त्र बदलता है। वस्त्र का परिवर्तन इस संसार के प्रति आसक्ति के कारण है। जब तक जीव इस मिथ्या जगत पर मुक्त रहता है तब तक उसे निरंतर देहांतरण करना पड़ता है। प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की इच्छा के फलस्वरूप वह ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों में फंसता रहता है। भौतिक इच्छा के वशीभूत हो उसे कभी देवता के रूप में तो कभी मनुष्य के रूप में, कभी पशु, कभी पक्षी, कभी कीड़े, कभी जल जंतु, कभी संत पुरुष तो कभी खटमल के रूप में जन्म लेना पड़ता है। यह क्रम चलता रहता है और प्रत्येक परिस्थिति में जीव अपने को परिस्थितियों का स्वामी मानता रहता है जबकि वह प्रकृति के वश में होता है। यहाँ पर बताया गया है कि जीव किस प्रकार विभिन्न शरीरों को प्राप्त करता है। यह प्रकृति के विभिन्न गुणों की संगति के कारण है। अतएव इन गुणों से ऊपर उठकर दिव्य पद पर स्थित होना होता है। यही कृष्ण भावनामृत कहलाता है। कृष्ण भावनामृत में स्थित हुए बिना भौतिक चेतना मनुष्य को एक शरीर से दूसरे में देहांतरण करने के लिए बाध्य करती रहती है क्योंकि अनादि काल से उसमें भौतिक आकांक्षाएं व्याप्त हैं। लेकिन उसे इस विचार को बदलना होगा। यह परिवर्तन प्रामाणिक स्रोतों से सुनकर ही लाया जा सकता है। इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण अर्जुन है जो कृष्ण से ईश्वर विज्ञान का श्रवण करता है। यदि जीव इस श्रवण विधि को अपना ले तो प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की चिर अभिलाषित आकांक्षा समाप्त हो जाए और क्रमशः ज्यों ज्यों वह प्रभुत्व जताने जमाने की चाह को कम करता जाएगा त्यों त्यों उसे आध्यात्मिक सुख मिलता जाएगा। एक वैदिक मंत्र में कहा गया है कि ज्यों ज्यों जीव भगवान की संगति से विद्वान बनता जाता है त्यों त्यों उसी अनुपात में वह आनंदमय जीवन का आस्वादन करता है। कृपया दोहराइए। इस प्रकार जीव प्रकृति के तीनों गुणों का भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन बिताता है। यह उस प्रकृति के साथ उसकी संगति के कारण है। इस तरह उसे उत्तम तथा अधम योनियां मिलती रहती हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है जिसमें भगवान हम यानी आत्मा एक देह से दूसरे देह में कैसे स्थानांतरण होते हैं उसके विज्ञान को समझा रहे हैं। हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि यदि हमारी श्रद्धा भगवद गीता में हो तो हम इतनी सरलता से वो बात समझ सकते हैं जो आइंस्टाइन और बड़े बड़े वैज्ञानिक बहुत पढ़े लिखे हैं बहुत या अनेक अनेक तपस्वी जो तपस्या कर रहे हैं वो भी जिस चीज को नहीं समझ सकते उसे हम बहुत आसानी समझ सकते हैं यदि हम भगवद गीता पर श्रद्धा रखें। जैसे जब बच्चा होता है उसके पिताजी माँ बाप बोलते हैं कि ये आग है और इसमें हाथ मत डालना, जल जाओ। अभी ये वचन यदि वो कि पिताजी ने बोला इससे सही होगा मान लिया तो कितना बड़ा उसको ज्ञान मिल गया एक क्षण के अंदर। और यदि ऐसा नहीं हो तो उसे खुद अनुभव करना पड़े, न जाने क्या क्या हो। तो शास्त्रों से और भगवान साक्षात भगवान से सुनने का ये फायदा है, नहीं तो इस विज्ञान को वैज्ञानिक लोग ना जाने कब समझ भी पाएंगे कि नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि बड़ा सूक्ष्म ज्ञान है कि एक जीव जो है, आत्मा जो है, वो एक शरीर से दूसरे शरीर में कैसे स्थानांतरण होता है। तो वैज्ञानिक लोग तो केवल इस जड़ संसार में केवल जड़ पदार्थों का अध्ययन कर पा रहे हैं, टीवी बना लेते हैं, कंप्यूटर बना लेते हैं, ये सब जड़ पदार्थ, भूमि अप अनल वायु खम मनो खम, और कुछ कुछ मन पे पहुंचे हैं। लेकिन यहां पर आत्मा की बात हो रही है कि आत्मा कैसे एक शरीर से दूसरे में आता है, तो उनको तो इसकी बात की जानकारी नहीं है। और इस जानकारी के ना होने से जितने भी लोग हैं जो अब अज्ञानता में हैं, वो अपना जीवन कुकर और सूकर की तरह से निभा रहे हैं। तो एक सामान्य व्यक्ति का जीवन क्या होता है, एक सामान्य व्यक्ति जन्म लेता है मां के गर्भ में से बिल्कुल अज्ञानता में, और फिर रोते रोते चिल्लाते हुए, कभी हंसते हुए, कभी मनोरंजन करते हुए ऐसे बड़ा होता है अज्ञानता में। फिर आजकल के विद्यालयों में उसको भेज दिया जाता है स्कूलों में, नर्सरी केजी और उसके बाद फर्स्ट सेकंड और इस तरह से बारहवीं, जहां पर वो पूरा ज्ञान क्या लेता है। आजकल के हमारे विद्यालयों में ज्ञान क्या दिया जा रहा है, खूब पैसा कमाओ, और पैसे कैसे कमाओ इसके अलावा कोई दूसरी बात तो वहां बताई नहीं जाती। भगवान के बारे में कोई जानकारी नहीं है, जीवन के लक्ष्य के बारे में, परम लक्ष्य के बारे में कोई जानकारी नहीं है, मृत्यु के बाद जीव का क्या होता है इस विषय में उनको कुछ पता ही नहीं है। अध्यापकों को, पूरे हमारे शिक्षण संस्थान को केवल एक चीज पता है कि पैसे कैसे कमाना है, इसलिए खूब पढ़ो, डिग्री बड़ी बड़ी कमाओ और फिर खूब पैसा इकट्ठा करो, और यही जीवन का लक्ष्य है। यानी व्यक्ति की काम वासनाओं को इतना बढ़ा दिया जाता है बच्चे की, माँ बाप भी मिलकर के बच्चे को हमेशा पंप करते रहते हैं, बेटे क्लास में फर्स्ट आना है, दूसरा नंबर नहीं आना चाहिए, बस फर्स्ट ही आना चाहिए, बेटे कॉलेज टॉप करना है, उसके बाद बेटे मेडिकल में आना चाहिए सिलेक्शन, इंजीनियरिंग में, नहीं तो हमारी नाक कट जाएगी। तो पूरा प्रशिक्षण है बच्चे को, नादान बच्चा कॉलेज में जाता है स्कूल में अंदर, उसको टीचर मिलकर के, ये समाज मिलकर के और माँ बाप मिलकर के उसको पूरा जीवन उसका नाश कर देते हैं। उसे ये ज्ञान देने की जगह है कि बेटे तू किसी भी समय मर सकता है, मरने से पहले तू कहाँ जाने वाला है, कौन सी योनि मिलने वाली है, उसको निश्चित कर ले, ये ज्ञान देने की जगह उसको ये क्षणिक कि तू डॉक्टर बन जा, तू इंजीनियर बन जा, ये ज्ञान उसको देते हैं। तो ये बहुत दुर्भाग्य है, एक्चुअली माँ बाप होने लायक नहीं है। यदि आप अपने बच्चों को जन्म मृत्यु के चक्र से नहीं निकाल सकते हैं, यदि आप उनको जानकारी नहीं दे सकते हैं, तो शास्त्रों के अनुसार आपको संतान उत्पत्ति करने का कोई अधिकार नहीं है। तो पूरा माहौल ये जो है आज आसुरिक हो गया है। आप किससे चाहिए, किसी को कुछ पता नहीं है क्या होने वाला है, क्षण भर का किसी को पता नहीं है, और योजनाएं ऐसी ऐसी ना जाने पता नहीं कहां कितने साल जीने वाले हैं, एक क्षण का पता नहीं। दुकानें बैठे हैं, दुकान से बाहर निकल के कम मृत्यु हो जाएगी, समाचार घर में आएगा जी वो तो आज गिर गया और मर गया, लेकिन योजनाएं सबके अंदर बड़ी बड़ी हैं, 10 साल बाद मैं ये करूंगा, 50 साल बाद ये करूंगा, अरे भाई कल क्या करोगे तो सोचो, कल मर जाओगे तो क्या करोगे सोचो, इस विषय में कोई सोच नहीं रहा है। तो ये क्यों है, ये सब गुणों के प्रभाव से है। तो जो तमोगुण और रजोगुण है, रजोगुण में होता है लोभ, काम और लोभ, कामा लोभा दयश्चये, भागवत में बताया गया है, तदा रजस तमो भावा कामा लोभा दयश्चये। तो रजोगुण से काम वासना बढ़ती है, जब व्यक्ति के अंदर रजोगुण की प्रवृत्ति बढ़ती है तो उसके अंदर अनेक अनेक इच्छाएं पनपती हैं, टीवी खरीद लो, कलर टीवी खरीद लो, बाइक खरीद लो, कार खरीद लो, ये खरीद लो, मकान बड़ा कर लो, वो कर लो, वो कर लो, अनगिनत इच्छाएं। आज आप बताइए सोच करके, तो आज हमारे समाज में ये टीवी और ये सब एजुकेशन मिलके क्या हमारी काम वासना को नहीं बढ़ा रहे, घर में फ्रिज होना ही चाहिए, अगर फ्रिज नहीं तो आप आदमी कहलाने लायक नहीं हो, वॉशिंग मशीन यदि आपके पास नहीं तो आप क्या जीवन जी रहे हो, क्या जानवर जैसा जीवन जी रहे हो? ऐसा हमको टीवी सिखा रहा है। यदि आपके पास ये नहीं है तो आपके जीवन में कुछ कमी है। तो किसी आदमी को बिना वॉशिंग मशीन के और बिना फ्रिज के और टीवी के सब रह रहे थे ना, लेकिन ये हमको प्रेरित कर करके ऐसा बना दिया है कि हमारी सोच ऐसी हो गई है कि जैसे हम इसके बिना रह ही नहीं सकते हैं। जैसे जो लोग चाय पीते हैं तो चाय का समय हुआ पांच, मतलब कि 5 बजे चाय चाहिए, नहीं तो उनका सिर काम नहीं करता है, दिमाग काम करना बंद कर देता है। और जो लोग चाय नहीं पीते हैं तो नहीं पीते, उनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता। तो क्या हुआ कि चाय के आदि बन गए। ऐसे हम लोग ये टीवी के माध्यम से ये आधुनिक सब जो चीजें हैं इनके आदि बन गए। तो जिसको एसी में रहने की आदत है वो तो एसी के बिना रह नहीं सकता, और जिनको एसी में रहने की आदत नहीं उनको कुछ प्रॉब्लम ही नहीं, और जिनको पंखा की में रहने की आदत नहीं उनको पंखे के बिना भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जिसको पंखे में रहने की आदत है उसको पंखे के बिना चल ही नहीं सकता। तो ये सब अपने को शरीर को इस प्रकार से हम ढाल रहे हैं। तो आज की जो आधुनिक सभ्यता वो क्या है, कृत्रिम आवश्यकताओं को बढ़ाना, और इसे नाम दे दिया गया है प्रगति। जिसके पास जितनी अधिक घर जिसका भंगार से फालतू की चीज से भरा हुआ है वो उतना प्रगतिशील है, और इससे हम एक दूसरे की होड़ करते हैं। पड़ोसी के पास तो इतने सारे आइटम है, हमारे घर में तो ये नहीं है आइटम, तो इसका मतलब हम पिछड़े हुए हैं। तो ये सब परिभाषाएं देके हमारी काम वासनाओं को बढ़ाया जा रहा है, और फलस्वरूप आदमी की संतुष्टि नहीं है आज। इसीलिए क्योंकि जब काम वासना होती है मन में तो कभी आदमी संतुष्ट नहीं हो सकता है। ये एक नियम है जो हम सब लोगों को जान लेना चाहिए। काम को बताया गया है दुष्पूरम अनलेन च, ये कभी संतुष्ट नहीं हो सकता है काम। जिसके मन में काम वासना बैठी हुई है वो बताया गया अग्नि की तरह से, और काम को पूरा करना मतलब अग्नि में पेट्रोल छिड़कना। अग्नि में पेट्रोल डालने से, ईंधन डालने से अग्नि कभी बुझती नहीं है, अग्नि बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। तो इसीलिए हमारे अंदर ये जो काम वासनाएं हैं, इच्छाएं हैं, ये खरीद लो, वो खरीद लो, ये एंजॉय कर लो, ये भोग कर लो, आप कितना भी भोग की सामग्री इकट्ठा कर लीजिए, पूरे संसार का भोग कर लीजिए, तब भी आपको संतुष्टि नहीं होगी। इसलिए आप सोचेंगे एक साधारण आदमी जिसके पास कार नहीं होती सोचता है बस एक कार हो जाए और एक बंगला हो जाए बस, फिर मुझे कुछ नहीं चाहिए होगा। लेकिन जिनके पास बंगले हैं कार हैं तो उनकी भी तो बहुत सारी इच्छाएं हैं, वो भी तो पूरा दिन रात भाग रहे हैं। तो यदि आप कार और बंगला होने के बाद कुछ नहीं चाहेंगे तो जिनके पास है वो क्यों भाग रहे हैं, वो हमसे ज्यादा भाग रहे हैं। जो करोड़पति है वो भी उतना ही और ज्यादा व्यस्त है। क्यों? क्योंकि लोभ आ जाता है, काम और लोभ ये सब भाई भाई है। तो ये काम और लोभ के पीछे भागते भागते ये तो हम समय ही नहीं मिलता है कि ये ज्ञान को कभी समझे। जैसे आज हम पुस्तक वितरण में गए थे, सबसे बड़ी समस्या लोगों के सामने जो हमने बताई लोगों ने कि हमें क्या बुक पुस्तक हम क्यों नहीं ले रहे हैं, समय नहीं, किसी का समय नहीं। क्यों? क्योंकि समय किस चीज के लिए बिता रहे हैं, पैसा कमाने के लिए बिता रहे हैं, और ये भोग सामग्री एकत्रित करने वाले। तो वो जो कमा रहे हैं उसको आपको भोग करने का भी टाइम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ऐसी गारंटी दे सकता है कोई? जो आप ये परिश्रम कर रहे हैं सब, इतना भोग के लिए इतना कठिन परिश्रम कर रहे हैं दिन रात, उसका भोग कर पाएंगे आप, इसी गारंटी कोई है? एक क्षण का हमको नहीं पता है और हम इतनी बड़ी बड़ी भोग सामग्री इकट्ठी कर रहे हैं, और अगले क्षण मृत्यु के बाद फिर कहां चले जाएंगे, कौन सी योनि में चले जाएंगे, ये बिना पते कितना एक पागलपन है कि हम ऐसे ही जिए जा रहे हैं। आंख बंद कर गाड़ी में जा रहे हैं, आगे वो लिखा है रोड पे कि आगे रास्ता खराब है, वो गड्ढे में जा रहा है, रास्ता गड्ढा है, आंख बंद किए बस अपनी मस्त होकर के चले जा रहे हैं, तो क्या परिणाम होगा? निश्चित रूप से गड्ढे में जाए गिर जाएंगे और खत्म। तो भगवद गीता में भगवान ऐसे हमको आगाह कर रहे हैं कि ऐसे ही आंख बंद करके भागो मत, कहां जा रहे हो जरा आंख खोल के देखो, कहां जा रहे हो, कैसा जीवन जी रहे हो और क्या होने वाला है तुम्हारा। लेकिन हम लोग भगवत गीता का अनदेखा करके आंख बंद करके बस यही जीवन में जितना भोग करना है कर लो, आगे का किसने देखा? आपने देखा नहीं देखा, जो है वो तो है, वो तो होगा ही, आपके देखने ना देखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति वो है, वो नहीं जिसका पीएचडी है, वो नहीं जिसके पास कार है बंगला है, वो व्यक्ति जिसके पास भगवान श्री कृष्ण का दिया हुआ ये ज्ञान है, जो ज्ञान चक्षु से देख रहा है। तो एक तो हमारी ये आंखें, इन आंखों से देखना होता है, तो इन आंखों से जब देखते हैं तो दूसरे को जब पैसे में पैसे वाला देखते हैं तो हमें लगता है वो हमारे पास भी काश इतना पैसा होता तो हम बड़े संतुष्ट हो जाते हैं, तो ये पागलपन है। ज्ञान चक्षु से देखना है कि अरे वो पैसे वाला भी उतना ही परेशान है जितना कि गरीब परेशान है, क्योंकि संतुष्टि का कारण वो नहीं है। तो इसीलिए यहां पर भगवान श्री कृष्ण इतना महत्वपूर्ण ज्ञान दे रहे हैं कि हमारा 84 लाख योनियों में भ्रमण हो रहा है। प्रभुपाद जी यहां लिख रहे हैं कभी तो हम देवता बन जाते हैं, कभी तो हम आदमी बन जाते हैं, और आदमी में भी अलग अलग प्रकार हैं। 84 लाख में 4 लाख प्रकार के मनुष्य हैं। कभी किसी का जन्म धनी परिवार में हो जाता है, तो कभी किसी का जन्म बिल्कुल गरीब परिवार में हो जाता है, कभी किसी का बड़ा हष्टपुष्ट शरीर होता है, तो कभी किसी का बिल्कुल बीमार शरीर होता है। ना जाने सबके अलग अलग वैरायटी है, और जो जिस स्थिति में होता है वो अपने अपने को उस स्थिति का स्वामी सोचता है। आज मैं अमीर हूं, ये मेरे वजह से, मेरे मेहनत की वजह से आज मैं अमीर हूं। कोई बुद्धिमान है, पढ़ने में तेज है, वो सोचेगा मैं बड़ा बुद्धिमान हूं। अरे भाई तुम बुद्धिमान नहीं हो, ये प्रकृति गुणों के कारण तुमको ऐसा शरीर मिला है कि तुम्हारी बुद्धि चल रही है। अगर तुम्हारी वजह से है ये बुद्धि, तो ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी बड़े बुद्धिमान होते हैं और फिर ऐसी बीमारी आती है कि उनको अपना नाम भी याद नहीं आता कि उनका नाम क्या है। तो तुम्हारी बुद्धि थी, अभी तुम अपना नाम भी नहीं बता सकते, अभी तुम अपने माता पिता को नहीं पहचान सकते, कहां गई तुम्हारी बुद्धि। कोई बड़ा हष्टपुष्ट है, एक है बॉक्सर बहुत बड़ा हुआ है मोहम्मद अली, आप सब जानते हैं। आज जानते हैं मोहम्मद अली क्या हाल है आज? वो अपना हाथ भी नहीं उठा सकता है। वो एक दिन सोचा था कि मैं संसार का सबसे बड़ा बॉक्सर हूँ, मैं जाने क्या कर सकता हूँ। आज क्या कर सकता है? हाथ भी नहीं उठा सकता अपना। कितने उदाहरण है। तो हम क्या हैं? प्रकृति के सामने मच्छर हैं। ये प्रकृति हमको से नचा रही है, और अपनी स्थिति में सोच, जो भी स्थिति में हमको मिलता है, हम सोचते हैं इसके स्वामी हूं, ये मेरा शरीर और ये मेरे कारण है ऐसा शरीर। इसीलिए इस पागलपन से हमको निकलना चाहिए, नहीं तो ऐसे एक दिन आएगा अचानक ये देह त्याग देंगे और फिर न जाने किस शरीर में, और फिर वह सब कार्य करना पड़ेगा। कुत्ते का शरीर में ले तो भौ भौ ही करना पड़ेगा, फिर वहां पर रिसर्च करना, फिर वो उसके रिसर्च कीजिए हड्डी कौन सी ज्यादा अच्छी है कुत्ते के शरीर में मिल जाएगा। तो कितना रिस्की लाइफ हम जी रहे हैं, वो महत्वपूर्ण प्रश्न को पूरा साइड में रख करके अनावश्यक चीजों को बढ़ा रहे हैं। भगवान ने व्यवस्था की है जीव के लिए, मनुष्य के लिए, आसानी से उसको उसकी जो आधारभूत आवश्यकताएं वो उपलब्ध है बड़ी आसानी से। उसको भगवान ने ऑलरेडी व्यवस्था की हुई है। भगवान ने भूमि बनाई है, भगवान ने बारिश देता है, वायु बनाई है, बीज बनाया है, केवल बीज को पृथ्वी में डालो, पानी थोड़ा सा डालो, वो भी बारिश आता है, पानी डालो और उससे फिर अंकुरित होता है और खाना, उससे अनाज उत्पन्न होता है, सब्जियां उत्पन्न होती हैं। मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या क्या है? हम कह रहे हैं बहुत बड़ी बड़ी समस्या हमारे सामने, सबसे बड़ी समस्या और वास्तव में समस्या जो है वो खाद्य है, खाना चाहिए आदमी। तो दूध और अनाज ये भगवान ने गाय है और आसानी से खेती करके आता है, ये वास्तविक समस्या है जिसको भगवान ने बड़ी आसानी से सॉल्व कर दिया है हमारा। लेकिन हम अपनी समस्याएं बना रहे हैं, अनगिनत समस्याएं हमने खड़ी कर ली। तो कारण यही है कि भगवद गीता के ज्ञान को अनदेखा करके काम और लोभ में ये जो हमारे लीडर्स हैं नेतागण, क्योंकि जनसाधारण में इतनी बुद्धि नहीं होती है कि वो क्या कर रहे हैं, क्या जीवन का लक्ष्य है। नेतागण समाज के यद यदाचरति श्रेष्ठस्य तद एवितरो जनाः सयत् प्रमाणं कृते लोकस्तद अनुवर्तते। जो समाज का अग्रणी लोग करते हैं जनसाधारण उसको फॉलो करता है। तो आज हम लोगों का दुर्भाग्य कि हमारे जो नेतागण हैं वो अंधे हैं, और इसलिए पूरी प्रजा जो उनका अनुसरण कर करके अंधे मार्ग पर चल रही है और सब अंधकार में गिर रहे हैं। तो इसलिए हमें आज यहां श्री कृष्ण से सुनना है, जिससे हम ये अंधेपने को छोड़ें और सोचें कि कहां जा रहे हैं। तो हमारा भी ये ऊंची और नीची योनि में जन्म होने वाला है, सावधान। जीवन में कभी किसी को कुछ कठिनाई है, किसी का पैसे कमी है, किसी का शरीर कुछ कमजोर है, तो वो तो चलता रहेगा, उसको इतनी बड़ी परेशानी नहीं है। बड़ी परेशानी है कि हमारा जन्म कहीं किसी पशु योनि में या कहीं किसी कोई भी योनि मिलेगा तो हमको जन्म मृत्यु जरा व्याधि से ही कष्ट से गुजरना पड़ेगा। वो समस्या है वास्तव में, उसको कैसे सॉल्व करना है, कैसे ऐसा जीवन प्राप्त करना है कि दोबारा से ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि आए ही नहीं, जड़ से हटा देना है इसको, ये वास्तविक समस्या है। बुद्धि का इस्तेमाल, समय का उपयोग इस समस्या के समाधान में होना चाहिए, ना कि अलग अलग प्रकार के लिपस्टिक खरीदने में, अलग अलग प्रकार की साड़ियों का ढेर लगाने में, अलग अलग प्रकार के जूतों का ढेर लगाने में, अलग अलग प्रकार के टीवी सेट खरीदने में, इसमें जीवन का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। तो जीवन को सादा बना के, बिल्कुल सादा, न्यूनतम जितनी शरीर की आधारभूत आवश्यकताएं हैं, और वास्तव में भौतिक दृष्टि से भी सुखी जीवन उसी का है जिसके पास ये आधारभूत आवश्यकताएं होती हैं, ये भी एक समझ लीजिए। कृत्रिम आवश्यकताओं को बढ़ाने से जीवन सुख में नहीं दुख में बनता है, ये आप स्टेटमेंट लिख करके इसके ऊपर रिसर्च कर लीजिए। कृत्रिम आवश्यकताओं को बढ़ाने से जीवन सुख में नहीं होता है, जीवन दुख में होता है। तो कृत्रिम आवश्यकताओं को बढ़ाने से उनकी मेंटेनेंस के पीछे हमको भागना पड़ता है और हमारा जीवन और अधिक उलझन में फंस जाता है। और आधारभूत आवश्यकताएं यदि व्यक्ति की मिल रही हैं आसानी से, जो भगवान के द्वारा उपलब्ध है, तो जीवन भौतिक दृष्टि से बड़ा शांति में रहता है। और ऐसे शांति में जीवन में आध्यात्मिक प्रगति होती है, आध्यात्मिक प्रगति के लिए अनुकूल वातावरण मिलता है, क्योंकि काम और लोभ नहीं रहता, कम होता है। तो व्यक्ति ध्यान लगा सकता है, व्यक्ति समझ सकता है कि भगवान कौन है, ये सब बातें उसके दिमाग में घुसती हैं कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। और जिसके मन में काम घुसा हुआ है, ना तो समय है ना बुद्धि है, गोबर भर गया अंदर, गोबर, जिसके मन के अंदर ये काम वासना है, तो उसके समझने की शक्ति खत्म हो जाती है, उसकी समझने की शक्ति खत्म हो जाती है भगवान को। इसीलिए हम देखते हैं आज संसार में, आप जाइए लोगों को बताइए, किसी को सही भी नहीं आता है कि हम शरीर नहीं है। तो आज हम देखेंगे कि यहां बताया कि हम कैसे एक शरीर से दूसरे शरीर में जाते हैं। तो यहां पर जो उपस्थित माताएं और पुरुष हैं, आप में से कितने लोगों ने अनुभव किया है अपने को एक शरीर से दूसरे शरीर में जाते हुए? क्योंकि हर चीज का कुछ प्रमाण चाहिए, शास्त्र अपने आप में है, वो प्रमाण है। उसके साथ साथ क्या हम में से किसी ने अनुभव किया है कि हम शरीर बदलते हैं? तो जो दीक्षित भक्त हैं उनको तो शायद पता होगा, हर दिन हम लोग अनुभव कर रहे हैं, हर दिन हम लोग शरीर बदल रहे हैं, हर दिन अनुभव करते हैं हम लोग। कैसे? तो रात्रि में क्या होता है, हम सपने देखते हैं ना, तो सपने में क्या होता है, आप बेड के ऊपर लेटे हैं, आपका जो शरीर है वो बेड के ऊपर है, और आप कहां होते हैं सपने में? आप किसी और शरीर में होते हैं। और हो सकता है सपने में, मान लीजिए आप जंगल में हैं, जंगल पहुंच गए और वहां पर शेर आपके पीछे है, और आप पूरे डर जाते हैं, आपके पसीने छूटने लगते हैं, आप चिल्लाते हैं, आपको पूरी अनुभूति होती है कि वास्तव में मेरे पीछे शेर है। केवल ये सोचने की बात नहीं, वास्तव में अनुभूति करते हैं और चिल्लाते हैं, और कई बार सपना फिर टूट जाता है और वापस आप इस देह में आ जाते हैं। तो क्या हुआ सपने में कि आपका जो सूक्ष्म शरीर है, मन बुद्धि और अहंकार, तो एक सूक्ष्म शरीर निर्मित हुआ मन बुद्धि अहंकार के द्वारा, सूक्ष्म शरीर, जिस शरीर के माध्यम से आप वो जंगल में उपस्थित थे, वो सूक्ष्म शरीर निर्मित हुआ, वो मन के अंदर जो शरीर निर्मित हुआ जिसके पीछे शेर भाग रहा था, जिसमें आप डर रहे थे, वो शरीर निर्मित हुआ, और जिसके जिसके द्वारा आपने सब कुछ अनुभव किया, आप डरे, आप चिल्लाए, और वो इतनी भयानक स्थिति थी कि आप उसको छोड़ करके तुरंत अपना जो स्थूल शरीर था दोबारा से उसमें वापस आ गए, उसकी शरण ले लिया आपने। आपको याद रहता है, ओहो बड़ा बुरा सपना देखा मैंने, यानी वही आप आदमी हैं, वही चेतना है आपकी, आपको याद है कि मैं अभी वहां था, मैं अभी वो देख रहा था, अभी यहां आ गया, आप देख रहे थे कि मैं उस प्रकार के शरीर में था, मेरे पीछे शेर भाग रहा था, मैं अब हाथ लगाई पसीने पसीने हैं आपके, सब देख सकते हैं पसीने निकल रहे हैं सब। जैसे दिन में आप एक सपना, दिन में एक अनुभूति कर रहे हैं, दिन में आपके पीछे मान लीजिए कोई चोर पड़े हैं पीछे, या गुंडे पड़े हैं, डकैत पड़े हैं, तो आप कैसे हो जाते हैं? तो सपने के समय में आप वो भूल जाते हैं। तो दिन में हम जब होते हैं, तो रात में जब हम सोते हैं, मान लिया सुबह में कोई हमारे साथ घटना हुई कि हमारा चोरों से वो हो गया और हम बहुत परेशान थे, अभी रात में सोने में क्या होगा, वो भूल जाएंगे, और रात का सपना, रात का अलग जिंदगी शुरू हो जाएगा, और दिन में क्या होगा, रात का भूल जाएंगे और दिन का शुरू हो जाएगा। तो दोनों ही अनुभूतियां हो रही हैं, और तरीके से दोनों सपने हैं, सपने मतलब दोनों ही क्षणिक हैं, सपने इस तरीके से क्षणिक हैं दोनों ही, ये स्थूल शरीर का सपना है और वो सूक्ष्म शरीर का सपना है। एक 6 घंटे का 8 घंटे का सपना है और एक बाकी के समय का 18 घंटे का सपना है, और कई कई लोगों का 12-12 घंटे का भी होता है, 12 घंटे का रात का सपना, 12 घंटे का दिन का सपना। उनको तो पता ही नहीं कि कब सो रहे, क्या कौन सपना है कौन सही, दोनों ही, क्योंकि 12 घंटे दिन वाला भूल जाते हैं, 12 घंटे रात वाला भूल जाते हैं। तो ये बड़ा गंभीर एक विषय है और बड़ा सरल है समझना कि ऐसे हम हर दिन देख रहे हैं कि हम शरीर परिवर्तन कर रहे हैं। तो मृत्यु क्या होती है कि जीवन भर हमने जो भी हमारे मन के ऊपर जो छाप पड़ी है, जो कुछ भी हमने किया है, जो कुछ भी हमने सोचा है, जो कुछ भी हमने अनुभव किया है, वो हमारे मन के ऊपर अंकित होता रहता है। और यानी मन के अंदर एक शरीर उत्पन्न होता रहता है हमारा, सूक्ष्म शरीर। जैसे सपने में एक सूक्ष्म शरीर बना था, ऐसे ही पूरा जीवन जो हम करते हैं उससे हमारे मन की वृत्तियां बनती हैं, हमारे मन में एक शरीर बनता है, और उस सूक्ष्म शरीर वो हमको मृत्यु उपरांत उसी प्रकार के देह में हमको ले जाता है, स्थूल देह में हमको ले जाता है, एक माँ के गर्भ में हमको ले जाता है। तो हर रात को हम लोग मरते हैं, क्योंकि स्थूल शरीर मर जाता है रात को जब सोते हैं, तो ये स्थूल शरीर तो वहीं का वहीं रहता है। जो सूक्ष्म शरीर है उसमें आप उसके द्वारा निर्मित एक शरीर में चले जाते हैं, लेकिन फर्क इतना ही है कि सोते समय, क्योंकि अभी ये हमारा शरीर ठीक है इसलिए आप वापस उसी शरीर में आ जाते हैं सपना टूटते ही। लेकिन मृत्यु क्या है, क्योंकि वो शरीर अभी खराब हो गया है, दोबारा वापस लौटने के लिए ठीक नहीं है, इसलिए आप उस शरीर को छोड़ करके अभी एक दूसरे शरीर में चले जाते हैं। जैसे ये घर है, अभी यहां बैठे हैं, अभी मान लीजिए आप यहां से जाते हैं घूमने के लिए या कहीं छुट्टी में जाते हैं, फिर वापस आते हैं। लेकिन मान लीजिए हल्लन आया और ये घर ध्वस्त हो गया, तो अभी हम यहां वापस नहीं आएंगे क्योंकि घर टूट गया, अभी हम कहीं और घर बनाएंगे। तो उसी प्रकार से हर रात को हम लोग हर रात को प्राण त्यागते हैं, देह त्यागते हैं, हर रात को सूक्ष्म शरीर के माध्यम से हम चले जाते हैं, दूसरा शरीर प्राप्त करते हैं सूक्ष्म शरीर, लेकिन वापिस आ जाते हैं इसी शरीर में। और मृत्यु में क्या होगा कि इस शरीर की जगह एक और दूसरे शरीर में चले जाएंगे। उसी प्रकार से हम देखें तो स्थूल शरीर भी हम परिवर्तन कर रहे हैं इसी जीवन में। जैसे बचपन में हमारा एक शरीर था, फिर जवानी में एक शरीर होता है, फिर एक बुढ़ापे में शरीर होता है, तो वो अलग अलग शरीर होते हैं लेकिन उसके देखने वाले हम ही हैं। जैसे हम ये शर्ट बदलते रहते हैं, आज अभी आप शर्ट पहने हैं फिर कुर्ता पहन लेंगे, तो आपने शर्ट बदल लिया, यानी कि आपने बदल लिया मतलब कि आप शर्ट से अलग हैं। आज हम पी टाइप में हैं, पहले एच टाइप में, फिर कहीं और थे, ऐसे कहीं और थे, तो हम क्या घर परिवर्तन कर रहे हैं। ऐसे ही जैसे हम वस्त्र परिवर्तन करते हैं या घर परिवर्तन करते हैं, ऐसे ही हम इसी जीवन में अपने देह परिवर्तन कर रहे हैं, छोटे बच्चे का देह, उसके बाद जवानी का देह, उसके बाद बुढ़ापे का देह। तो लेकिन हम जाते हैं, हम वही व्यक्ति हैं जो हम पहले वहां रहते थे, अभी इस घर में रहते हैं, हमको हम वही व्यक्ति हैं, हम व्यक्ति नहीं बदले, घर बदले हैं, व्यक्ति वही है। तो उसी प्रकार से हम सब अपने जीवन में अनुभव करते हैं कि हम तो वही हैं, हम पहले छोटे थे, हमारा शरीर पहले इतना सा था, अभी हमारा शरीर इतना बड़ा हो गया है, अभी हमारा शरीर बूढ़ा हो गया है। तो ये शरीर बदल रहा है और ये हम देख रहे हैं शरीर को बदलते, यानी कि हम शरीर से अलग हैं। तो इसीलिए ये कोई मुश्किल नहीं है समझना कि हम शरीर से अलग हैं, हम शरीर बदल रहे हैं। तो बुद्धिमानता ये है कि यदि हम शरीर बदल रहे हैं तो एक शरीर के अनुसार हम एक प्रकार का कार्य करते हैं। जैसे अभी वर्तमान में दिन में है तो कोई सोच रहा है कि मैं फलाना फलाना आदमी हूं, मेरे ये फलाना फलाना घर है, तो वो उस शरीर के संबंध में सोच रहा है और उस शरीर के संबंध में कार्य कर रहा है, लेकिन सपने में एक दूसरे शरीर के संबंध में कार्य करेगा। यानी कि ना तो जो दिन में वो शरीर के संबंध में कार्य कर रहा है वो सही है, वो उसका वास्तविक कार्य है, वास्तविक उसकी पहचान है, और ना जो रात में वो शरीर देखकर कार्य करेगा ना वो उसकी वास्तविक पहचान है। तो बुद्धिमान व्यक्ति के मन में ये प्रश्न उठना चाहिए कि तो आखिर मेरी वास्तविक पहचान है क्या। ना तो मैं दिन वाला आदमी हूं, ना मैं रात वाला आदमी हूं, ना मैं बच्चे वाला शरीर वाला आदमी हूं, ना मैं बुढ़ापे वाला शरीर वाला, आखिर मैं हूं कौन। ये तो मैं शरीर बदल रहा हूं और शरीर के अनुसार जिस प्रकार के शरीर में होता हूं मान लेता हूं कि वो मैं हूं, लेकिन शरीर बदलता रहता है, वैसे वैसे मैं बदलता रहता हूं, मेरी धारणा बदलती रहती है। एक बच्चे को, छोटा बच्चा होता है, उसको गुड्डे गुड़ियों से खेलने बड़ा आनंद आता है। आपको आएगा, आपको गुड्डे गुड़ियों का एक बॉक्स ला के देते हैं, आप खेल सकेंगे गुड्डे गुड़ियों के साथ? नहीं खेल सकते, आपका शरीर बदल गया है, शरीर बदल गया है आपका, अभी आप नहीं खेल सकते। और बच्चा आपके काम नहीं कर सकता क्योंकि उसका अलग शरीर है। तो फिर ये शरीर हम बदल रहे हैं और एक शरीर के अनुसार जैसा होते हैं, जिस शरीर में होते हैं वैसे ही काम करने लगते हैं। एक कुत्ता है, वो सोच रहा है मैं कुत्ता बन गया, वास्तव में वो कुत्ता नहीं बना, वो कुत्ते के शरीर में है, लेकिन कुत्ते के शरीर के अनुरूप वो कार्य करना शुरू कर देता है। तो यहां ये बताया गया है कि इस प्रकार पुरुषः प्रकृतिस्तु हि भुङ्क्ते प्रकृति जान गुणान। हम ये प्रकृति में स्थित हैं, प्रकृति के द्वारा अलग अलग शरीरों में स्थित हैं, और उस प्रकार के द्वारा जो हमें शरीर दिए गए उनके द्वारा हम भोग करने में लगे हैं इस संसार का। कोई कुत्ते के शरीर के द्वारा भोग करना चाह रहा है, उसका प्रयास कर रहा है, कोई आदमी के शरीर के माध्यम से भोग करने का प्रयास कर रहा है, कोई स्त्री के शरीर के माध्यम से भोग करने का प्रयास कर रहा है, कोई पुरुष के शरीर के माध्यम से, कोई देवता के शरीर से, कोई चींटी के शरीर से, लेकिन सब क्या कर रहे हैं, भोग करने का प्रयास कर रहे हैं। नाना प्रकार के भोग का प्रयास करने के कारण ही, इच्छा के कारण ही हमको अलग अलग शरीर मिल रहा है। तो प्रकृति के पास 84 लाख प्रकार की योनियां हैं और उनमें सभी प्रकार की आपकी इच्छाएं एकोमोडेट हो सकती हैं। जो भी आप इच्छा करना चाहें वो इन 84 लाख योनियों में आपकी पूरी करने का इंतजाम है। आप जैसी इच्छा करेंगे और उसके अनुरूप आप उस जैसा कार्य करेंगे, प्रकृति आपको, देवतागण जो हैं उनके संरक्षण में जो प्रकृति चल रही है वो आपको वैसा शरीर दे देंगे। ये विज्ञान है। जीवन भर हम जो कर रहे हैं, जीवन भर हम जो इच्छाएं कर रहे हैं, जिस प्रकार की, मान लीजिए मनुष्य शरीर मिला, लेकिन आपको बहुत इच्छा है कि मैं सोऊं। कुछ लोग ऐसी इच्छा होती है, सोता रहूं। वो शरीर है एक प्रकार का, वो एक प्रकार का गुणों का प्रभाव है, तमोगुण। तो जिनको ये प्रभाव होता है उनको सोने बड़ा आनंद आता है। तो ऐसी योनियां हैं जहां पर इस सोने के आनंद को बहुत अच्छे से हम दे सकते हैं। जैसे पेड़, बस आराम से एक जगह खड़े रहो, ये तमोगुण की योनि है पेड़। तो जो लोग बहुत तमोगुण में होते हैं उनको मरने के बाद ये पेड़ की योनि मिलती है। 1000 साल तक सोते रहो, कोई नहीं डिस्टर्ब करेगा। फिर किसी को रजोगुण है, बहुत अधिक खाना है, बहुत अधिक एंजॉय करना, बहुत अधिक इच्छा, बहुत मांस खाना है, तो उस प्रकार का शरीर है। जाओ, क्यों इस मनुष्य शरीर में प्रयास कर रहे हो? शेर का शरीर ले लो, मांस ही खा सकते और कुछ खा ही नहीं सकते। तो ये सब प्रबंध है प्रकृति के पास, सब इसलिए अलग अलग प्रकार की योनियां हैं। तो ये जो मनुष्य योनि है इसमें हमारे हाथ में है कि हम क्या इच्छा कर रहे हैं, किस प्रकार के गुणों के साथ संगति कर रहे हैं, उसी प्रकार का हमको शरीर मिल जाए। एक बार जैसी संगति कर ली और मन में जैसे जैसे विचार बन गए, फिर मृत्यु उपरांत जो भी होगा वो शरीर धारण करना पड़ेगा। फिर ऐसा नहीं कि कुत्ते का शरीर के लिए फिर अभी यमदूत यमलोक में भेजा गया, क्योंकि ट्रेनिंग देनी पड़ेगी ना। अभी तो आप हलवा खाते हैं, फिर जब सूअर की योनि मिलेगी वहां पर आपको हलवा पसंद नहीं आएगा, वहां पर आपको दूसरा हलवा पसंद आएगा। तो इसलिए उसका ट्रेनिंग देना पड़ेगा आपको। तो वो ट्रेनिंग जो है वो नरकों में दी जाती है। हाँ, ये सब भागवत में वर्णन है। तो ये विज्ञान है सब। ये देखिए बताया है भगवान ने, शरीरम यद अवाप्नोति यच्चाप्युत क्रामतीश्वरः गृहीत्वी तानि संयाति वायुर्गंधा निवाशयात। इस संसार में जीव अपनी देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे में उसी तरह से ले जाता है जिस तरह वायु सुगंधी को ले जाता है। इस प्रकार वह एक शरीर धारण करता है और फिर इसे त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता है। जैसे वायु, तो आप देखिए, मान लीजिए बाहर गुलाब के फूल लगे हैं, तो अभी क्या होगा, या चमेली के फूल लगे हैं, तो जब वायु बहेगी तो वो चमेली की जो महक है उसको हमारे नाक तक ले आएगी। वो चमेली का फूल वही है, लेकिन वो जो उसकी सुगंध है उसको वो जो वायु है वो यहां तक, हमारे पास तक ले आएगी। तो ये भगवान उदाहरण दे रहे हैं कि उसी प्रकार हमारा सूक्ष्म शरीर, हमारा मन बुद्धि अहंकार आत्मा को एक शरीर से दूसरे शरीर में ले जाता है, और दूसरे शरीर में जाते ही उसको उसके अनुरूप क्या बताया है, श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायम विषया अनुपसेवते। इस प्रकार पानी थोड़ा, इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार का कान, आंख, जीव, नाक तथा स्पर्श इंद्रिय, त्वचा प्राप्त करता है जो मन के चारों ओर संपुंजित हैं। इस प्रकार वह इंद्रिय विषयों के एक विशिष्ट समुच्चय का भोग करता है। तो देखिए क्या बताया है कि जिस प्रकार का हमने इच्छा किया है और जिस प्रकार कर्म किया है हमें उस प्रकार का शरीर मिलता है, और शरीर मिलता है मतलब उस प्रकार की हमको एक इंद्रियों का समुच्चय दे दिया जाता है। कि एक प्रकार का मन जो हम लेके गए हैं उसके चारों ओर उस प्रकार की इंद्रियां होती हैं कि उनको उस प्रकार के विषय से संपर्क में आने से उनको आनंद मिलता है। जैसे सुअर, तो सुअर को मल खाने में आनंद आ रहा है, क्यों? क्योंकि उसकी योनि में जो उसको जीव मिली है उसको मल से आनंद आता है। मनुष्य की जो जीव मिली है वो ऐसी नहीं है, उसकी अलग है, मच्छर के अलग है, सबके अलग अलग है, सांप की अलग है, सबकी अपनी अलग अलग है। तो ये कैसे है? तो जैसा उसको प्रकृति ने शरीर दिया उसके अनुरूप उसको वो इंद्रियां दी, और जिस इंद्रियों को उसके विशिष्ट विषय के संपर्क में आने से एक प्रकार का आनंद मिलता है, और जब वो उससे उब जाता है तो दूसरे प्रकार की योनि में जाता है, उससे उब जाता है दूसरे प्रकार की योनि में जाता है। ऐसे वो अलग अलग योनियां भ्रमण करता जा रहा है, वो सोच रहा है ये आनंद लेकर के संतुष्ट हो जाऊंगा, लेकिन संतुष्ट नहीं होता, तो ठीक है दूसरे प्रकार का ट्राई कर लो, दूसरे प्रकार का आनंद ट्राई करता है उसमें भी संतुष्ट होता है, ठीक है अभी और एक ट्राई कर लो। ऐसे 84 लाख प्रकार की योनियों में अलग अलग आनंद भोगने की इच्छा से हम भ्रमण करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, लेकिन संतुष्टि तो मिल ही नहीं सकती है, क्योंकि ये जो जड़ पदार्थों के द्वारा जीव को संतुष्टि नहीं मिल सकती, ये भ्रांति है जीव की, क्योंकि जीव चेतन है, ये जो भोग करने की उसकी जो इच्छा है ये एक भ्रांति है, इस आधार ही गलत है। इस भौतिक जगत को जीव के जो भोग करने की इच्छा है वही गलत है, जीव इस भौतिक जगत का भोगता नहीं है, जीव कृष्ण का सेवक है, कृष्ण सेवा में ही उसका आनंद है। लेकिन ये भूल करके हम सोच रहे हैं इस भौतिक जगत का भोग करके मुझे आनंद हो जाएगा। जब हम देखते हैं हमारे सगे संबंधी होते हैं, अपने सगे संबंधियों से रहने में कितना आनंद आता है ना, जब घर में सब लोग मिलते हैं लगता है हाँ कितना सुखी हूं मैं, मेरे बच्चे मेरे पास है, मेरी पत्नी है, कितना अच्छा मेरा घर संसार है। बड़े टीवी में बड़े बड़े सीरियल बनाए थे हम लोग और पिक्चर बनाते हैं और लोग सोचते हैं वाह कितना आनंद है, लेकिन ये सब क्षणिक है। आनंद है, सही बात है, आनंद है, आनंद है, लेकिन क्षणिक है ना, बहुत क्षणिक है, और वो उतना ही हमारे दुख का कारण बन जाता है। हम जितना जिससे मोह करते हैं, क्योंकि प्रकृति का तो नियम है कि आपको उनसे अलग होना ही पड़ेगा, क्योंकि शरीर के आधार पे है और शरीर एक दिन हटेगा, टूटेगा, हर चीज इस जगत में व्यय होने वाली है, इसीलिए शरीर के आधारित जो भी सुख है वो क्षणिक है, और इसीलिए वो हमारे दुख का कारण बनता है, क्योंकि हमें चाहिए नित्य सुख, और भौतिक जगत में नित्य कोई चीज है ही नहीं। यदि नित्य कोई चीज है तो वो केवल शाश्वत भगवान और जीव का संबंध है, और कोई इस जगत में शाश्वत चीज है ही नहीं। इसलिए हम अलग अलग प्रयास करते रहे, कभी हमको सुख नहीं मिलेगा। तो जानवरों के पास तो ये क्षमता नहीं है कि वो ये सत्संग में आ सकें, सुन सकें, समझ सकें, लेकिन मनुष्य योनि में हमको एक जो हमारी स्वतंत्र इच्छा शक्ति है वो पुनः हमको कुछ मात्रा में वापस मिलती है। जानवर में इच्छा शक्ति लगभग नगण्य है, लगभग नगण्य है। कुत्ता मतलब कुत्ते की तरह ही उसको चलना पड़ेगा, उसको सिखा करके आदमी नहीं बनाया सकता। हाँ आदमी कुत्ते की जैसे काम कर सकता है, वो स्वतंत्र है, आदमी कुत्ते की जैसे काम, कुत्ता आदमी की तरह नहीं बन सकता। तो आजकल आदमी यही प्रयास कर रहा है, क्योंकि वो सोचता है मेरे अंदर शक्ति है तो मैं क्यों ना कुत्ते की तरह काम करूं, जानवर की तरह से काम करूं। तो वो हमारे अंदर स्वतंत्र इच्छा शक्ति है, तो उसका हम दुरुपयोग या सदुपयोग कर सकते हैं। तो मनुष्य जीवन में हमें क्या करना चाहिए कि ये जो तीनों गुणों के प्रभाव की वजह से हम अलग अलग शरीर परिवर्तन करते जा रहे हैं, जीवन का एकमात्र लक्ष्य, एकमात्र ध्येय हर क्षण जिसमें बीतना चाहिए वो यही है एकमात्र, कैसे इन तीनों गुणों के प्रभाव से पूर्ण रूप से मुझे मुक्त हो जाना है। ये जो कलमश है तीनों गुणों का, जो मुझे बार बार एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने में विवश कर रहा है, उससे मुझे कैसे अपने को मुक्त करना है, यही जीवन में एकमात्र चिंतन चिंता होनी चाहिए। बाकी चिंताएं करके भी आप क्या कर लेंगे? आपको चिंता है मेरे घर में ये समस्या है, मेरे को वो समस्या है, तो आपके कर्म के अनुसार जो समस्याएं हैं आप उनको कोई बहुत अधिक बदल नहीं सकते हैं। जो कर्म के अनुसार निर्धारित है वो आपको मिलेगा ही। तो जिन चीजों को आप बदल नहीं सकते हैं या बदलने पर भी जो अपने आप फिर बदल जाएंगी, आप मेहनत करके पैसा इकट्ठा कर लिया, वैसे आपकी केवल मेहनत से पैसा नहीं आएगा, पर आप मान भी रहे हैं कि आपकी मेहनत से पैसा आ गया तो कितने दिन रहेगा आपके पास? तो ये जानते हुए कि भौतिक जगत में जो भी हमारी स्थिति है वो हमारे कर्म के अनुसार हमको एक प्रकार की स्थिति प्राप्त है, आप उसको ज्यादा बदल नहीं सकते हैं। इसीलिए जैसी भी वो है उसमें संतुष्ट होना सीखें। जैसी भी है, कोई गरीब है कोई बात नहीं, भगवान जैसा जिस हाल में रखता है वो मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ है, मेरे जैसे कर्म है ऐसे। लेकिन भगवत प्राप्ति का मार्ग गरीब के लिए उतना ही खुला है जितना अमीर के लिए खुला है। अमीर आदमी पैसे के नशे में चूर होकर के भूल सकता है, भूल जाता है, अक्सर ऐसा होता है कि भगवान क्या है, कोई भगवान नहीं, मैं भगवान। इसलिए कुंती महारानी प्रार्थना करती हैं कि ये जो उच्च कुल में जन्म, धन ऐश्वर्य सौंदर्य ज्ञान, भगवान ये सब मुझसे आप छीन लो, क्योंकि ये सब के होने से आदमी के अंदर मादकता आती है, घमंड आता है और वो आपको भूल जाता है। इसलिए अच्छा है कि ये सब मुझसे छीन लो आप। तो लेकिन ऐसा नहीं कि जो गरीब है वो स्वतः ही भगवान का भक्त हो जाएगा, ऐसा भी नहीं। तो गरीब है लेकिन उसके अंदर इच्छा भरी पड़ी अमीर बनने की। तो चाहे अमीर है चाहे गरीब है चाहे कैसी भी स्थिति में है, उसको स्वीकार करना चाहिए कि ये मेरे कर्म के अनुसार मुझे मिला है, जैसा भी मिला है मुझे इसी में संतुष्टि करनी है। मुझे उसके लिए अपनी स्थिति को सुधारने के लिए अत्यधिक प्रयास नहीं करना है, प्रयास करना है भौतिक स्थिति को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करके वापिस अपनी आध्यात्मिक स्थिति भगवत धाम जाने के लिए मुझे जो प्रयास करना है वही एकमात्र जीवन प्रयास होना चाहिए। बाकी केवल शरीर यापन के लिए, टिकाने के लिए मिनिमम पॉसिबल, जितना कम से कम हो उतने में काम करके अपने समय को शक्ति को बचाना चाहिए कि हम सदैव के लिए इस चक्र से, ये जो सब टेम्परेरी, ये सब जो क्षणिक अवस्थाएं से हम गुजरते जा रहे हैं, फिल्म की तरह से एक सीन आता है फिर दूसरा सीन आता है फिर तीसरा सीन आता है, ऐसे ही सब सीन बदलते रहेंगे हमारे लिए। आज अमीर है कल गरीब हो जाएंगे, आज बीमार है कल अच्छे हो जाएंगे, कल कुत्ता बिल नहीं है, सब बनते रहेंगे ऐसे, फिल्म की तरह से बनता रहेगा। इसलिए उसके विषय में परेशान नहीं होकर के उसे जैसा है जो मिल चुका है, जैसा भी मिला है उसमें संतुष्ट रह करके अभी आगे भगवत धाम कैसे जाना है उसके लिए प्रयास होना चाहिए। तो बताया गया भागवतम में, पराभाव स्तावद अबोध याता यावत न जिज्ञासत आत्म तत्वम यावत क्रियास्तावद इदं मनो वही कर्मात्मकम ये न शरीर बंधा। तो हर व्यक्ति अपने जीवन को सफल बनाना चाहता है, लेकिन भागवतम में कहा गया है कि व्यक्ति का जीवन असफल है जब तक उसने आत्म जिज्ञासा, तत्व जिज्ञासा नहीं किया। क्योंकि जब तक वो क्रियाओं में फंसा रहेगा, भौतिक कर्मों में फंसा रहेगा, तब तक उसके मन में कोई ना कोई एक छाप पड़ती रहेगी भौतिक कर्मों की, और जिसकी वजह से कर्म बंधन चला आता रहेगा, चला आता रहेगा, चला आता रहेगा। जैसे उदाहरण दिया है कि पानी जो है जब आकाश से आता है तो बिल्कुल शुद्ध होता है, क्रिस्टल क्लियर होता है। अभी उसमें हम मान लीजिए हरा रंग थोड़ा डाल लें, एक बूंद, तो उसका जो रंग है वो बदल जाएगा। अभी उसके ऊपर एक और लाल रंग की बूंद डाल दें तो अभी इसका रंग और थोड़ा बदल जाएगा। ऐसे करके हम अलग अलग रंग बना सकते हैं। तो ऐसे ही जो हमारा मन है, जितना भी हम इस भौतिक जगत में भौतिक कार्यों में निहित हैं, जिस भी कार्य में निहित हैं, वो वैसे ही रंग का होता रहता है। हमारा मन वैसे रंग चढ़ते रहते हैं उसके ऊपर, अलग अलग रंग चढ़ते रहते हैं। तो अगर आप भौतिक रंगों को चढ़ा रहे हैं, भौतिक क्रियाकलापों में व्यस्त हैं, तो ये भौतिक रंगों रंग चढ़ते रहेंगे और मृत्यु के समय में जो रंग होगा उसके अनुरूप आपको शरीर मिल जाएगा। इसी सिद्धांत के अनुसार यदि आप पूरा जीवन भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करने का, उनकी सेवा करने का, उनके सेवक बनने का चिंतन करते रहेंगे, तो आपके मन के ऊपर से जितने भी ये रंग हैं वो सब खत्म हो जाएंगे और वास्तविक जो चेतना है, शुद्ध, जिसमें कोई रंग नहीं है, जो शुद्ध रूप है उसका, क्रिस्टल क्लियर वाटर, वास्तविक चेतना है, वो दोबारा से प्रकट होगी, सब कलमश हट जाएगा। और अंत समय में फिर उस स्थिति की वजह से, मन की उस स्थिति की वजह से, निश्चित रूप से हम अपने स्वाभाविक आध्यात्मिक धाम में, भगवत धाम में जाएंगे। तो ये कितना सुंदर एक विज्ञान है जिसके द्वारा हम हमेशा हमेशा के लिए जन्म मृत्यु के चक्र से निकल सकते हैं, अपनी नित्य स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। तो यहां प्रभुपाद जी बहुत महत्वपूर्ण वाक्य लिख रहे हैं, कि यदि जीव इस श्रवण विधि को अपना ले तो प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की चिर अभिलाषित आकांक्षा समाप्त हो जाए, और क्रमशः ज्यो ज्यो वह प्रभुत्व जताने की चाह को कम करता जाएगा त्यों त्यों उसे आध्यात्मिक सुख मिलता रहेगा। जैसे हमने बताया सुख ग्रहण करते हैं हम इंद्रियों से। तो हमने बताया एक सुअर की इंद्रिय है, जीवा है, जिसको हमारा हलवा पसंद नहीं, उसको अपना हलवा पसंद है, और हमारी जीवा है जिसको हमारा हलवा पसंद है। तो यानी कि इंद्रिय अलग है। उसी प्रकार से जो आध्यात्मिक सुख है उसे ग्रहण किया जाता है, उसे अनुभव किया जाता है आध्यात्मिक इंद्रियों से, जड़ इंद्रियों से आध्यात्मिक सुख ग्रहण नहीं किया जाता। तो जैसे यदि हम इस समय में यदि सुअर जैसा जीवन बिताने लगे तो अगले जीवन में हमको सुअर का जीत दे दी जाएगी, उसी प्रकार से यदि हम इस जीवन में अपनी इंद्रियों को शुद्ध करने का जो विधि है उसको अपनाएंगे तो हमारा क्या होगा, जो हमारी स्वाभाविक आध्यात्मिक इंद्रिय है वो दोबारे से शुद्ध हो जाएंगी और फिर हमको आध्यात्मिक आस्वादन रस आना शुरू होगा, फिर भगवान की सेवा में आना जाना शुरू होगा। जिस अनुपात में ये भौतिक कलमश हटेगा उस अनुपात में आध्यात्मिक सुख प्राप्त करना हम प्रारंभ करेंगे। जैसे प्रोपाधान देते हैं जो हमने कल भी बोला था, पीलिया रोग, तो जीवा वही है लेकिन बीमारी की वजह से अभी वो स्वादिष्ट मीठी वस्तु को मीठा गुण उसका अनुभव नहीं कर पा रही है। उसी प्रकार से वर्तमान में हमारे सब कान, हमारी सब ये सब कलुषित इंद्रियां हैं। कलुषित, कलुषित क्या है, कलुषित क्या है, दूषण, वो है प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की इच्छा, ये है प्रदूषण, कि मैं इस संसार का भोगता हूं, मुझे ये भोग करना मेरा सुख है, ये है कलमश। जब तक इसका लेश मात्र भी रहेगा, जब तक ये पूर्ण रूप से नहीं हटता तब तक पूर्ण आध्यात्मिक सुख अनुभव नहीं कर सकते, भगवान की सेवा का पूर्ण सुख अनुभव नहीं कर सकते। लेकिन जिस अनुपात में ये कम होगा उसी अनुपात में भगवान की सेवा में सुख आना शुरू हो जाएगा। तो ये विज्ञान है, अपने को शुद्ध करने का विज्ञान, शरीर के ये भौतिक शरीर से अपने को छुटकारा दिला करके अपने आध्यात्मिक शरीर में पुनर्स्थापित होने का विज्ञान है ये, जिसमें हमारी स्वाद दोबारे से डेवलप हो जाएगी। तो हम सुनते हैं भगवान के महान भक्तों के विषय में कि जिनको भगवान की सेवा में अत्यंत आनंद आता है। जैसे हम देखें तो रुक्मणी है, तो एक बार भगवान श्री कृष्ण उनसे कुछ मजाक कर रहे थे, अटखिलिया कर रहे थे कि एक्चुअली मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूं, आपके आप तो इतने बड़े घर से हैं और मैं तो एक ग्वाला था और ये था, ऐसे उनसे मजाक करते हैं रुक्मणी से। तो बोलते हैं, तो रुक्मणी को ऐसा लगता है कि भगवान श्री कृष्ण उनको छोड़ के चले जाने वाले, तो वो ये सुनते ही बेहोश हो जाते हैं। तो ये शुद्ध भक्त का लक्षण होता है, वो इतना उसके अंदर जब आध्यात्मिक स्वरूप में व्यक्ति स्थित होता है, ये विचार कि वो भगवान की सेवा नहीं कर पाएगा एक क्षण के लिए भी, वो उसके लिए मृत्यु जैसा लगता है, इतना चेंज हो जाता है। और एक हमारी स्थिति है कि हमको भगवान की सेवा करने में बड़ा दुख आता है, भगवान का नाम जप करने में कितना तकलीफ होता है, बड़ा कड़वा लगता है, ये क्या इतना, इससे तो टीवी देख लेते इसकी जगह इस टाइम में, या तो घर वालों से बात कर लेते, इसलिए जप करते करते क्या करते हैं, घर वालों से बात करते हैं या टीवी देखते देखते जप करते हैं, ऐसे लोग भी हैं टीवी देखते जप करते हैं। कि तो मन रुचि नहीं है बिल्कुल, क्यों नहीं है, क्योंकि हमारी ये इंद्री पूरी तरीके से कलुषित है। तो अभी घर वालों से बात करने बड़ा आनंद आता है, या ये मन को सोचने में चिंतन करने में, अभी वो होगा, अभी वो होगा, अभी ऐसा होगा, अभी वो सब भौतिक सोचने बड़ा आनंद आता है मन को। इसलिए जब एक बार ना बोलते हैं मन कहीं चला जाता है, क्यों, क्योंकि मन को उसमें आनंद आ रहा है, फिर मन को खींच कर आते हैं, फिर दोबारा से मन चला जाता है, क्यों, क्योंकि मन को उसमें आनंद आ रहा है। तो जब ऐसे करते करते, प्रयास करते करते, श्रवण करते करते जब हमारी इंद्रिय शुद्ध हो जाएगी, तब हम देखेंगे कि हमारा मन कहीं और हट ही नहीं पाएगा, चारों तरफ नगाड़े बज रहे हैं, कोई कुछ भी कर रहा है, लेकिन आपका मन उधर जाएगा ही, इतने आप उसके अंदर खो जाएंगे, क्योंकि अभी आपकी इंद्रिय बदल गई, आपको उसमें कोई रुचि नहीं है। ये भक्ति मार्ग के द्वारा आप सब लोग अनुभव कर सकते हैं, ये इसका प्रूफ है। पहले हम लोग अपने जीवन में देखे हैं कि पहले हमारे को यही शिक्षा थी कि बहुत बड़ा आदमी बनना है, स्कूल में हमेशा फर्स्ट आना है, तो पहले उसमें बड़ा आनंद आता था जब स्टेज के ऊपर नाम बोलता था कि वो तुमने टॉप किया है, तो पता लगता है क्या हो गया है, हाँ कितना आनंद आ रहा है। ऐसे व्यक्ति का ये अलग अलग स्वभाव होता है, फिर फिल्मी गीत है तो उसमें बड़ा आनंद आता है। लेकिन आज वही चीज जब कहीं चलती है, सुनते हैं, तो अपने पे आश्चर्य होता है कि एक समय ऐसा था कि हमें इसमें आनंद आ रहा था, और आज ऐसा लगता है कि कितना निर्जीव है वो चीज। और ये मेरी बात नहीं है, ये सब भक्त अनुभव कर सकते हैं, जो भी थोड़ा भी सिंसियरिटी से हरे कृष्ण मंत्र कर रहे हैं और ये भक्ति कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि आप परिवर्तित हो रहे हैं। और कई बार आपको अनुभव नहीं होगा, आपके घर वालों को अनुभव होगा कि आप परिवर्तित हो रहे हैं।
आपके घर वाले बोलेंगे तो क्या होता जा रहा है, तो बोलता जा रहा है पहले ऐसा नहीं था, अभी क्या हो गया, पहले टीवी देखता था, टीवी देखना बंद कर दिया, वहां मिलना जुलना बंद कर दिया, ये बंद कर दिया, तंबाकू खाना बंद कर दिया, चाय पीना बंद कर, क्या हो गया तुझे। लेकिन हमारा विकास धीरे धीरे हो रहा है, इसलिए हमको कई बार लगता है कि कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन हमारे जो सगे संबंधी हैं, आसपास रहने वाले लोग हैं, वो अनुभव करते हैं अभी तुम वो आदमी नहीं रहे, अभी तुम बदल गए, तुम्हारी रुचि बदल गई, तुम्हारा टेस्ट बदल गया, सब बदल गया। तो ये कैसे परिवर्तन हो रहा है? अगर ये सब सच्चाई नहीं है तो ये सब परिवर्तन कौन ला रहा है, कैसे ला रहा है? तो एक भक्त जो है प्रयास से, अभी उसको कहा जाए जबरदस्ती कि तुम इंद्रिय भोग करो, चाहते भी वो नहीं कर सकता, किसी भी तरह से नहीं कर सकता। उसको बोलो तुम जाए क्रिकेट मैच देखो, वो देख ही नहीं सकता, उसको कोई रुचि नहीं है उसमें। जब पहले जिसमें इतनी रुचि आ रही थी, टीवी के पीछे पागल था वो, क्रिकेट मैच के पीछे, अभी भक्त बन गया, पता लगा टीवी को उसने उठा के बात फेंक दी, क्या हो गया उसको, इंद्रियां बदल गई उसकी। तो ऐसे जैसे हम अग्नि में जब लोहा रखते हैं या बिजली के संपर्क में लोहे को लाते हैं, तो वो लोहा जो है फिर वो बिजली की तरह से काम करता है, बिजली के उसमें छुएंगे तो बिजली का करंट लगेगा उससे। आग में रखेंगे लोहे को तो वो इतना गर्म हो जाएगा, लाल हो जाएगा, तो बिल्कुल अग्नि की तरह काम करेगा, जहां उस लोहे को लगा देंगे वो जला देगा जिस चीज को। तो ये विज्ञान है कि इंद्रियों को हम जितना भगवान श्री कृष्ण के संपर्क में लाते रहेंगे, लाते रहेंगे, लाते रहेंगे, वैसे वैसे वो अपनी ये भौतिकता के गुण को छोड़ करके आध्यात्मिक हो जाएंगे, जो उनका स्वरूप है, और फिर भगवान की कथा में, भगवान के गुणगान में स्वादिष्ट, वो बड़ा आनंद उसमें आने लगेगा। तो विधि क्या है? श्रवण आदि शुद्ध चित्त करहु उदय, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबु नय, श्रवण आदि शुद्ध चित्त करहु उदय। ये जो कृष्ण प्रेम है कोई ऐसी चीज नहीं है कि हमारे अंदर नहीं है और हमें कुछ बाहर से लेकर अपने अंदर लानी है, ये नित्य सिद्ध है, ये हर जीव का स्वाभाविक संवैधानिक लक्षण है कृष्ण प्रेम। कृष्ण प्रेम मतलब क्या? कृष्ण की अहितु की अप्रतियता सेवा करने की इच्छा को ही कृष्ण प्रेम कहते हैं। कई लोग सब, हमको प्रेम की परिभाषा भी नहीं पता है, क्योंकि भौतिक जगत का हम प्रेम देखते आए हैं, तो भौतिक जगत का प्रेम प्रेम नहीं है, काम है। आत्मेंद्रिय प्रीति इच्छा तरे कहे काम, कृष्णेंद्रिय प्रीति वांछा धरे प्रेम नाम। यह है परिभाषा प्रेम की। कृष्ण की इंद्रियों को संतुष्ट करने की इच्छा का नाम है प्रेम, और अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने का नाम है काम। तो भौतिक जगत में बोलते हैं हमें उससे प्रेम है, पर हमें किसी से प्रेम नहीं है, हमें केवल इंद्रिय कामना है, हमें केवल काम वासना है, कोई किसी से प्रेम नहीं करता है, शुद्ध नहीं है, थोड़ा बहुत हो सकता है लेकिन शुद्ध नहीं है। विशेष रूप से माँ और बच्चे के बीच में जो प्रेम होता है इस भौतिक जगत में प्रभुपाद बताते हैं, वो वास्तविक प्रेम का सबसे नजदीक का रिश्ता है। जो कृष्ण प्रेम का सबसे अभी आसपास में कोई उदाहरण इस भौतिक जगत में दिया सकता है तो वो होता है कि माँ जो है वो बच्चे को वो काफी हद तक स्वार्थ रहित होती है, अन्यथा किसी न किसी हद पे अंततः हरेक के अंतर्गत जो भी प्रेम प्रकटीकरण हो रहा है, अंततः उसके अंदर वो काम वासना ही अपने इंद्रियों की संतुष्टि की इच्छा है। लेकिन कृष्ण प्रेम है जहां अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने की इच्छा नहीं है, केवल कृष्ण की इंद्रियों को संतुष्ट करने की इच्छा है। और जब व्यक्ति इस स्थिति में स्थित होता है तो कृष्ण की इंद्रियों को संतुष्ट करने से उसको वो संतुष्टि मिलती है जो भौतिक संतुष्टि जिसके सामने कुछ है ही नहीं। तो वो है आध्यात्मिक आनंद। तो ऋषभदेव कहते हैं अपने पुत्रों को, तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम शुद्धयेत यस्मात् ब्रह्म सौख्यं तु अनंतम। मनुष्य जीवन तपस्या के लिए बना है जिससे कि ये ब्रह्म सुख, आध्यात्मिक सुख हम अनुभव कर सकें। भगवत गीता में बताते हैं छठे अध्याय में कि जिस सुख को प्राप्त करने के बाद आपको और कोई सुख की अभिलाषा नहीं रह जाएगी, परम सुख, सब कुछ आपकी इच्छाएं खत्म, समाप्त, संपूर्ण संतुष्टि। जैसे ध्रुव महाराज, तो ध्रुव महाराज की क्या इच्छा थी? भगवान की गोद में नहीं, अपने पिता की गोद में, और उनके पिता थे उत्तानपाद। तो स्वयंभू मनु, मनुष्य जो है उनका नाम मनुष्य क्यों है? कि मनु की संतानें हैं आरंभिक स्टार्टिंग, तो मनु की संतान मनुष्य कहलाते हैं। तो स्वयंभू मनु के पुत्र उत्तानपाद और उनके पुत्र ध्रुव महाराज, तो उनको उनका एक सौतेली माँ थी, वो माँ ने घमंड में आकर उनको एक बार अपने पिता की गोद में नहीं बैठने दिया। ध्रुव महाराज को इतना गुस्सा आ गया, छोटे से बालक थे लेकिन क्षत्रिय थे, क्षत्रिय खून था उनके अंदर, कि मेरा आज अपमान किया, मुझे मेरे पिता की गोद में नहीं बैठने दिया, तो मैं अपने पिता के राज्य से भी, अपने दादा के राज्य से बड़ा राज्य लेकर के दिखाऊंगा। तुमने मेरा अपमान किया तो मैं इतना बड़ा, यानी ब्रह्मा जी से भी बड़ा राज्य लेकर के दिखाऊंगा। तो ये उनके अंदर इच्छा थी, और ये इच्छा लेकर के वो फिर उनकी वो जो सौतेली माँ थी सुरुचि, उन्होंने ही बोला कि तुझे मेरी कोख से जन्म लेना पड़ेगा यदि उतना अपने पिता की गोद में बैठना है तो, क्योंकि वो मैं उनकी प्रिया हूँ, तेरी माँ प्रिया नहीं है उनकी, और इसके लिए तुझे नारायण के पास जाना पड़ेगा, भगवान तेरे कृपा करेंगे और मेरी कोख से जन्म लेगा तभी तुझे ऐसा होगा। फिर अपनी माँ के पास आते हैं, उनकी माँ बोलती है हाँ सच बोला है बेटे, तेरी सौतेली माँ ने कि तेरे पिता मेरे को नहीं चाहते हैं इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं, तो क्या करूं मैं, तो तू नारायण के पास जाओ, नारायण से मांगते जो कुछ मांगना है वो तेरी इच्छा पूरी कर सकते हैं, देवता नहीं कर सकते हैं, उन्होंने कहा देवता कर सकते हैं, उन्होंने कहा नारायण कर सकते हैं, क्योंकि नारायण ही कर सकते हैं ये इच्छा पूरी। तो फिर वो नारायण कहाँ मिलेंगे, तो उनकी माँ ने बोला मैंने सुना है कि नारायण जंगल में मिलते हैं, तो उनकी माँ को भी तो पता नहीं था लेकिन सुना था, सुना है तो गलत नहीं सुना था, पहले ऋषि मुनि जंगल में जाकर के तपस्या करते थे, तो तपस्या करने से भगवान मिलते हैं, तो चल दिए 5 साल की आयु। फिर वहां भगवान ने देखा कि ये बच्चा जो है बड़ा अच्छा सुंदर बालक ऐसी इच्छा कर रहा है, तो उन्होंने नारद मुनि को भेज दिया कि जाओ जरा ध्रुव महाराज को मार्गदर्शन दो। तो ध्रुव महाराज को नारद मुनि मिले, बोले कि बेटे तुम्हारी खेलने की उम्र है, इतना क्यों तुम इसको गंभीरता से ले रहे हो, अगर माँ ने कह दिया है बच्चों में इतना गंभीरता से नहीं लेना चाहिए, तुम तो बच्चे हो क्यों इतना गंभीर ले रहे हो उसको, और यदि तुम अपने को इतना बड़ा समझ रहे हो कि तुम जवान हो गए हो, तुम बड़े हो गए, समझदार हो गए, तो फिर तुम्हें समझना चाहिए कि मान और अपमान में क्या रखा है, ये तुम वास्तव में समझदार हो गए हो तो फिर ये मान अपमान के पीछे क्यों भाग रहे। तो सब कुछ सुना ध्रुव महाराज ने, लेकिन बोला नारद जी आपकी बात सब सही है, लेकिन मुझे आपकी अभी ये बात जो है मैं स्वीकार नहीं कर सकता हूँ, मुझे इस समय जो मेरी भौतिक इच्छा है उसको पूरा किए बिना मैं नहीं रह सकता, इसलिए आप बात जो कह रहे हो जो भी है लेकिन मैं उसको स्वीकार नहीं कर सकता, अभी आप मुझे बस यही बताइए कि मैं नारायण को कैसे प्राप्त करूं, मैं अपनी इच्छाओं को कैसे पूरा करूं। तो नारद मुनि ने उनको बताया कि तुम मंत्र करो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और अर्च विग्रह की पूजा करो, जंगल में जाओ इस तरह से भगवान का विग्रह स्थापित करो मिट्टी में से, हर दिन उनको इस प्रकार से अर्चना करो, फूल चढ़ाओ, ये सब विधि उनको बताई पूरी भागवत में बताया गया, और भगवान के ऊपर ध्यान लगाओ, ये मंत्रोच्चारण करो, भगवान का ध्यान लगाओ, भगवान का नाम लो, पूरी विधि उनको समझाई, तीव्रता से भजन करो और फिर तुम भगवान को प्रसन्न कर पाओगे। तो ध्रुव महाराज ने इतनी कठोर तपस्या की, पहले महीने के अंदर केवल कंदमूल फल खाए, दूसरे महीने के अंदर केवल पत्तियां, तीसरे महीने में केवल पानी, फिर पानी भी छोड़ दिया, फिर हवा भी छोड़ दिया, बड़ी कठिन तपस्या की, और 6 महीने के अंदर भगवान प्रसन्न हो गए उनकी भक्ति सेवा से, इतनी अच्छी उन्होंने सेवा की भगवान, कठोर तपस्या की। और भगवान जब प्रकट हुए तो ध्रुव महाराज भगवान का दर्शन करते ही, पहले से ही भगवान उनके पूरी पूरी प्रक्रिया के अंदर भगवान के ऊपर चिंतन करने से क्या हुआ, उनका धीरे धीरे हृदय पूरा शुद्ध होने लगा, और जब अंततः भगवान के पहले हृदय में प्रकट हुए और फिर अंत में सामने प्रकट हुए, तो फिर जब भगवान ने कहा, भगवान का हंसता हुआ चेहरा उन्होंने देखा, तो भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा कि ध्रुव अब मांगो तुम क्या मांगते हैं। तो भगवान तो जानते हैं अंतर्यामी हैं, लेकिन फिर भी क्या मांगते हो, अभी तो तुम चाहते हो तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाए। तो लेकिन ध्रुव महाराज ने उस समय कहा स्वामी कृतार्थ अस्मिन वरम न याचे, अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए, अभी मुझे आपका ये जो चेहरा है, मुझे आपकी भक्ति, शुद्ध भक्ति मिल गई है मुझे, अभी मैं शुद्ध हो गया हूं, मुझे अभी कोई कामना नहीं रह गई है, मुझे मैं कुछ नहीं चाहिए, मैं कांच के टुकड़े मांग रहा था लेकिन मुझे हीरा मिल गया। तो यानी कि आप देखिए, तो जो भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त करता है, तो ऐसे वही ध्रुव महाराज जिन्होंने ब्रह्मा का राज्य जिनको चाहिए था, भगवान की शुद्ध भक्त होने पर उनको वो कैसा लगा, तृण तुल्य लगा, घास की तरह लगा, ये तो बकवास है। तो आप सोच सकते हैं कितना आनंद है शुद्ध भक्ति में, कि हम सोचते हैं एक बंगला मिलने पर हमें कितना आनंद आ जाएगा, उनको ब्रह्मा जी का सब कुछ मिल सकता था, उनको ब्रह्मा जी का राज्य मिल सकता था, लेकिन ध्रुव महाराज बोले मुझे ये नहीं चाहिए, तो ये बेकार है सब, ये सब बेकार। तो ये हमको सब ये समझाने के लिए है, बताने के लिए है कि वास्तव में हमें क्या इच्छा करनी चाहिए, हमें इच्छा करनी चाहिए भगवान की सेवा के सुख की, सुख हमको चाहिए, आनंदमय अभ्यासात, हर एक व्यक्ति आनंद की खोज में, और आनंद के बिना वो जीवित नहीं रह सकता। लेकिन समझना यही है कि हमारे को जो आनंद चाहिए वो है कृष्ण सेवा आनंद, भगवान की सेवा से मिलने वाला आनंद ही वो आनंद है जो हमें संतुष्ट कर पाएगा, इसलिए उस आनंद को प्राप्त करने के लिए प्रयास करना चाहिए, वो आनंद को प्राप्त करने के लिए प्रयास करना गलत नहीं है, वो जीव का स्वाभाविक स्वरूप है। इसलिए ये मार्ग है और वो मार्ग मतलब ये लक्ष्य है। और मार्ग क्या है, रूपा बता रहे हैं कि ये जो भौतिक जगत को प्रभुत्व जताने की जो हमारी चिरकालीन इच्छा रहती आई है, जो हमारे बंधन का कारण है, इसका मुक्ति इससे होगा भक्तों के मुख से श्रवण करते रहने से, करते रहने से, करते रहने से। तो ये तरीका है, ये श्रवण। जैसे आप देखिए कोई सांप का काटा हुआ आदमी है तो मूर्छित है, तो अगर कोई एक्सपर्ट वो झाड़ने वाला है तो कान में ऐसे मंत्र फूंक सकता है जिससे व्यक्ति वापस चेतना में आ सकता है। उसी प्रकार से हम वर्तमान में भूली हुई चेतना में भूल गए हैं अपने को, भगवान को। तो ये जो भगवान की कथा है भक्तों के मुख से जब ये निकलती है, ये जो मंत्र और ये जो भगवान की कथा भागवतम भगवद्गीता भक्तों के मुख से होनी चाहिए, लेकिन अभक्तों के मुख से नहीं। भक्तों के मुख से जब ये निकलती है और कानों में हम इसको जाने देते हैं, ध्यान से इसको केवल श्रवण करते हैं, तो क्या प्रभाव होता है कि ये धीरे धीरे हमारी सुसुप्त अवस्था में से हमको जागृत करती है। हमारी ये भौतिक जगत में प्रभुत्व जताने की इच्छाएं खत्म होती जाती हैं और भगवान की सेवा करने की इच्छा बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, और धीरे धीरे हम स्वस्थ जाते हैं। और जैसे जैसे बढ़ते हैं वैसे वैसे वास्तविक आनंद अनुभव करते हैं, भौतिक जगत में निरानंद, भौतिक जगत के प्रति हमारी रुचि खत्म हो जाती है। हमको पता है कि कर्तव्य की तरह से निभाना है हमको, और अपना भगवान वास्तविक मेरा जो संबंध है वो तो उनके साथ है। इसलिए ऐसे बढ़ते रहते हैं और फिर अंत समय में भगवान का स्मरण करते हुए आराम से भगवत धाम जाते हैं। बड़ा आसान है भगवत धाम जाना, हंसते हंसते भगवान की सेवा करते करते। आसान मतलब ऐसा नहीं कि बिना कुछ किए हो जाएगा, भगवान की सेवा करना पड़ेगा जम करके, वो तो करना पड़ेगा, उसके बिना कोई चारा नहीं। लेकिन भगवान की सेवा करना बड़ा अच्छा है। सुसुखम कर तुम अव्ययम, ये जो भक्ति का मार्ग है ये बड़ा सुगम मार्ग है, ये सुख का मार्ग है। जब करना है, भगवान के बारे में सुनना है, सुंदर सुंदर कथाएं, भगवान के थोड़ी तपस्या है, हरि नाम ले रहे हैं, नाम में मन नहीं लग रहा है, नींद आ रही है तो खड़ा होना है, कष्ट होना है, सुबह जल्दी उठना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, भगवान के लिए नाम लेना है, पुस्तक वितरण करने जाना है, तो ये सब तपस्या है, कष्ट है, थोड़े कष्ट है, ज्यादा बड़े कष्ट नहीं है। कहां तो तपस्वियों का कष्ट है, हिमालय पे जाओ ठंड में रहो, कितना बड़े बड़े कष्ट लेते हैं और उनको वो परिणाम नहीं मिलता जो हमको मिल जाएगा। थोड़ा सा कष्ट लेना है भक्ति में कि हरि नाम लेना है, केवल कृष्ण प्रसाद खाना है, बाहर जा रहे हैं गोलगप्पे खाने का मन किया है लेकिन नहीं खाना है, नहीं खाना है केवल भगवान प्रसाद, तो आप गोलगप्पे घर बनाए खाइए कोई बात नहीं चलेगा, जितना सुगम है। तो ऐसे करके हम भक्ति मार्ग अपनाएंगे, ये भगवान की सेवा में रत रहेंगे तो शुद्ध हो जाएंगे और भगवत धाम जाएंगे, फिर दोबारा से इस भौतिक जगत में कभी नहीं आना पड़ेगा। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है किसी का?
लेकिन जो हम भगवान की प्रार्थना करते हैं वो भी एक तरीके से सेल्फ ही तो है, क्योंकि हम मोक्ष पाना चाहते हैं और जीवन चक्र से निकलना चाहते हैं, तो वो भी हम अपने लिए तो करते हैं।
हाँ, इसलिए अपने लिए तो कर रहे हैं क्योंकि हम जीव जो है अपने लिए कर रहा है, क्या मतलब, अपनी स्वाभाविक स्थिति में स्थित होने के लिए हम वो कार्य कर रहे हैं। अपनी स्वाभाविक स्थिति में स्थित होना गलत नहीं, मछली को पानी में जाने की इच्छा करना गलत नहीं, वो मछली का स्वाभाविक स्थान है। हम जो है पत्थर नहीं है कि बस बिना इच्छा के ऐसे भूत बन जाएंगे, इच्छा करना वो गलत नहीं है लेकिन गलत इच्छा करना गलत है। स्वार्थ वो जीव का जो जीवन है, जो प्राण है, आप बोलो अभी हम श्वास ले रहे हैं तो श्वास लेना स्वार्थ है, श्वास लेना बंद कर दो, तो श्वास जीवन है वो बंद नहीं किया सकता। भगवान की सेवा करना जीव का वो सांस है, उसका प्राण है, उसको बंद नहीं किया सकता, तो फिर तो अस्वाभाविक स्थिति हो गई। जैसे ये अस्वाभाविक स्थिति है भगवान की सेवा ना करना, ऐसे भगवान की सेवा ना मांगना, उसमें स्थित ना होना, तो वो भी अस्वाभाविक स्थिति में रहना है। तो वो इच्छा करना ही तो वास्तविक इच्छा है। वो स्वार्थ, जीव को स्वार्थ तो चाहिए क्योंकि जीव भगवान पर निर्भर है, हम भगवान पर निर्भर हैं, इसलिए हमें भगवान से प्रार्थना करनी पड़ेगी। भगवान की तरह हम ऐसा नहीं कि स्वराट हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए, नहीं, हम तो उन पर निर्भर हैं, इसलिए उन पर निर्भर होना गलत नहीं, हम उन पर आश्रित हैं, उनके सेवक हैं, उनकी सेवा करना, उनकी सेवा करने की इच्छा करना गलत नहीं है, उनकी सेवा ना करके भोग करना ये गलत है।
कर्म और भाग, आदमी को दोनों चीजें साथ लेके चलनी है, किसी एक चीज का जो है
भाग्य क्या है
फिर, मतलब आदमी जो मानता है, जीव जो मानता है कि भाग मेरे भाग में जो भी कुछ है वो तो होना ही है।
हाँ, ये भाग्य कैसे बना?
वो
भाग्य बना पूर्व कर्मों से।
हाँ, मैं वही बात जो है मैं जानना चाह रहा हूँ, जीव जो चलता है वो भाग्य के अनुसार चलता है या कर्म के अनुसार चलता है या दोनों चीज साथ के?
हाँ, तो उसके लिए एक उदाहरण है। मान लीजिए आप हवाई जहाज में यात्रा कर रहे हैं, अब आप एक बार हवाई जहाज के अंदर हैं, आप कुछ चीजें हैं जो अपनी इच्छा से वहां कर सकते हैं, आपके पास खाने की कुछ चीज लेके आई गई है, आपकी इच्छा है आप खाएं कि ना खाएं, आप कुछ हो सकता है एक सीट छोड़कर के दूसरी पे बैठ जाएं, लेकिन आप एरोप्लेन के अंदर ही और कुछ हद तक कुछ कार्यों को ही कर सकते हैं। आप सोचें मैं इसी समय आप जमीन पर चला जाऊं तो वो कार्य संभव नहीं है, तो कुछ आपके हाथ में है और कुछ आपके हाथ में नहीं है, कुछ निर्धारित हो गया कि वायुयान के अंदर आप बैठ गए तो कुछ चीजें निर्धारित है कि इन्हीं के अंतर्गत आप बंध गए, इनमें से कुछ कार्य कर सकते हैं। तो वर्तमान में एक प्रकार का शरीर, एक प्रकार का वातावरण हमको मिला है, वो हमारे जो पूर्ववर्ती कार्य हैं जिसे हम भाग्य कहते हैं उसके अनुरूप मिला है, यानी उसका एक दायरा बन गया, सीमाएं बन गई, लेकिन उस सीमाओं के अंतर्गत कुछ स्वतंत्रता आपको दी है, जिन स्वतंत्रता का सदुपयोग दुरुपयोग करके आप अपना अगला शरीर अगली सीमाओं को निर्धारित करेंगे और फिर उनके अंतर्गत जो कार्य करेंगे उससे अगली सीमा निर्धारित होंगी। तो इस प्रकार से दोनों चीज कार्य चल रही हैं। एक भाग्य के अनुसार हमको एक प्रकार की स्थिति मिली है, लेकिन उस स्थिति में हम कैसा उसके उपयोग कर रहे हैं उसको, जैसे पैसे वाले के पास पैसा मिला है उसके कर्म से भाग्य से मिला है, अभी वो उस पैसे का उपयोग कैसे करता है, कुछ उसको स्वतंत्रता मिली है, दारू पी के भी कर सकता है, मंदिर में नान लेके भी कर सकता है,
मतलब कर्म को साथ लेके चलना पड़ेगा।
बिल्कुल, नहीं कश्चित क्षण भी जातु तिष्ठते कर्मकृत। अगर सब कुछ पूर्व निर्धारित है, पहली बात तो भाग्य कर्म मतलब ही कर्म से आया ना, भाग्य बना कर्म से, तो ये तो सुनिश्चित आराम से समझ सकते हैं कि यानी कि कर्म जब पहले कर्म किया तब भाग्य बना, तो स्वाभाविक है कि आज भी कर्म करेंगे तभी तो आगे का बनेगा कर्म। वास्तव में जो ज्ञान आज दिया जा रहा है विद्यालयों में वो आसुरी ज्ञान है, वो ज्ञान नहीं होना चाहिए। आप यहाँ ये ज्ञान दिलवा रहे हैं उनको कि भगवान है, और स्कूल में ज्ञान दे रहे हैं कि भगवान नहीं है, तो बच्चे को क्या सिखा रहे हैं? तो आइडियल मतलब कि आदर्श स्थिति है कि जो स्कूल हैं आजकल के उनमें केवल इंद्रिय प्रीति की इच्छाओं को बढ़ाने के अलावा और कुछ नहीं हो रहा है, इसलिए वास्तविक एजुकेशन है गुरुकुल एजुकेशन, जिसमें ये नहीं पता जाता है गुरुकुल के अंदर कि आपको अपनी ये भौतिक ये इच्छाओं कैसे बढ़ाना और कैसे बढ़ाना। व्यक्ति जो गुरुकुल शिक्षा है, जो वास्तविक शिक्षा है हमारी, वो होती है चरित्र निर्माण की शिक्षा, भागवतम की शिक्षा, भक्ति की शिक्षा, लोग बच्चों को बताना कि जीवन का लक्ष्य क्या है, ना कि टेक्नीशियन बनाना। ये शिक्षा जीविकोपार्जन की शिक्षा है, विशेष रूप से जीविकोपार्जन की शिक्षा हमारी वैदिक संस्कृति के अंतर्गत घर के अंदर या समाज के अंदर साथ साथ काम करते करते, पिता के साथ पिता के संरक्षण में काम करते करते, भाइयों के साथ काम करते करते अपने जीविकोपार्जन की शिक्षा सीखी जाती थी, जिसके लिए आज हमको विद्यालय में भेजना पड़ रहा है, वो शिक्षा का हेतु ही नहीं था, शिक्षा थी चरित्र निर्माण के लिए। तो खेती, किसी के पिताजी कृषक हैं, वो तो उसको स्कूल में जाके खेती सीखने कोई सीखता था? स्कूल में जाके खेती सीखता था क्या? एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी नहीं होती थी, उसकी जरूरत नहीं थी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, घर में खेती हो रही है, घर में खेती करते करते खेती सीखेगा, ना ही पिताजी ये हैं तो ना ही का उसको स्कूल में जाके नहीं सीखना है कैसे ब्यूटी पार्लर का कोर्स करना है। अरे भाई, नाई बनने के लिए क्या ब्यूटी पार्लर कोर्स करना है, घर में है ऐसे सीखा, शिक्षा उसके लिए नहीं थी। आज का ये पूरा आसुरी सभ्यता है जिसके अंदर बच्चे को 30 साल तक अपने पैर पे खड़ा होने के लिए 30 साल तक उसको पढ़ाई करनी पड़ती है, और 30 साल के बाद भी उसको पता नहीं, कंफर्म नहीं कि मैं पैर पे खड़ा हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा, क्या करूंगा। लेकिन ये जो स्थिति में फंस गए हैं, तुरंत इससे निकल पाना संभव ना हो वो दूसरी बात है। तो उसके लिए वर्तमान स्थिति में हम हैं, तो कम से कम हम बच्चों को ये ट्रेनिंग दें कि वो जो हो रहा है ठीक है, जीवी को पाजने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा अभी, क्योंकि स्थिति बदल गई है अभी, तो इसलिए स्कूल भेजना दुर्भाग्य से पड़ेगा, नहीं है कहीं नहीं है, इसलिए हम फंसे हुए हैं। मैं इसलिए ये कह रहा हूं कि आइडियल क्या होना चाहिए नहीं है, इसलिए समय में वर्तमान समय में ये इनके जैसे भी हो सकता है थोड़ा बहुत करना पड़ेगा, क्या करें वो बात अलग है, तो भेजना पड़ेगा, पढ़ना ही पड़ेगा, दैट्स ओके। लेकिन कम से कम हमको ये पता होना चाहिए कि ये लक्ष्य नहीं है जीवन का कि बस पढ़ो खूब पढ़ो और बस ऐश करो, वो लक्ष्य नहीं है। जीवी को पाजन जितना हो आसानी से होता है करिए, लेकिन मेन ये पता होना चाहिए, उनके भाव में बह नहीं जाना चाहिए कि बस यही जीवन है। हरे कृष्ण, श्री प्रभुपाद की जय।